نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھتا ہے اور پھر تمہارے جو بھی اعمال ہیں ان کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا گیا وہ اصل میں کامیاب ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ سورہ آل عمران میں یہ آیت ہے، اور جس پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہی بات ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا کی زندگی کا دھوکہ کیا ہے؟ کیا ہے دنیا کی زندگی کا دھوکہ؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دنیا کی زندگی کو فرماتے ہیں دھوکے کا سامان ہے، متاع الغرور ہے۔ ہم زندگی کی حقیقت کچھ اور شاید سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ اور بتائی قرآن کریم میں۔ یہ آیات بھی آپ پڑھ چکے ہیں، آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ کیا دھوکہ اس کا؟
مال، اولاد،
اس کا دھوکہ کیا ہے؟ ہمیشہ رہیں گے اور بالکل یعنی دنیا کی زندگی کا دھوکہ یہی ہے کہ یہاں پہ رہتے ہوئے انسان اس میں اتنا مشغول ہو جائے کہ اس کو یہ بھول جائے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا۔ اس کے دھندے میں انسان اپنے آپ کو اتنا بزی کر لے کہ اس کو اپنی موت بھول جائے۔ یہاں پہ رہتے ہوئے انسان ان ایکٹیویٹیز میں، اس کی چمک دمک میں اتنا محو ہو جائے کہ اس کو یہی یاد نہ رہے کہ میری ملاقات رب کریم کے ساتھ ہونی ہے۔ یہ اس دنیا کی زندگی کا دھوکہ ہے، اور یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ انسان کو ایسے بتایا گیا قرآن کریم میں کہ جیسے سراب ہوتا ہے، ابھی آپ کی گرمیاں جب ہوتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں معراج کے، آپ کو سڑک پہ چلتے ہوئے بہت سخت گرمی میں ایسے لگتا ہے کہ آگے پانی ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا۔ کوئی اگر آپ سے کہے وہ پانی نہیں ہے اور آپ کہیں نہیں نہیں مجھے تو نظر آ رہا ہے یہ پانی ہے، میری آنکھیں دھوکہ کیسے کھا سکتی، مجھے نظر آ رہا ہے یہ پانی ہے، لیکن جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں وہ آگے سے آگے ہوتا جاتا ہے۔ اور اسی کو زندگی کہتے ہیں، دنیا کی زندگی، کہ انسان ایسا دھوکہ کھاتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یہی حقیقت ہے، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ وہ چلتا ہی جاتا ہے، بھاگتا ہی جاتا ہے، بھاگتا ہی جاتا ہے، اور جب اس کی زندگی کا اینڈ آ جاتا ہے نا، تب اس کو پتہ چلتا ہے نہیں یہ تو دھوکہ ہے، کیونکہ میں بھاگتا چلا گیا، یہ تو ملنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ وہ آپ دیکھتے ہیں نا، آپ جتنی گاڑی آگے دوڑاتے ہیں وہ اور آگے نظر آنے لگتا ہے، پھر آگے دوڑاتے ہیں وہ اور آگے نظر آتا ہے، وہ تو آپ کے ہاتھ آتا ہی نہیں، وہ تو پانی ہے ہی نہیں جس کو ہم نے پانی سمجھا ہے۔ اسی طرح یہ دنیا کی زندگی ہے، آپ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں، اینڈ آ جاتا ہے، آپ کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا، یہ آپ کو بھگاتی ہے، یہ آپ سے لیتی ہے، دیتی کچھ نہیں ہے، آپ کی جوانی لے رہی ہے، آپ کا وقت لے رہی ہے، آپ کی انرجی لے رہی ہے، اور آپ کو ریٹرن میں کیا دے رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، گزرتا ہوا وقت یہاں پہ کچھ نہیں آپ کو ہاتھ آ رہا۔ آپ سوچتے ہیں کہ میں یہ بنا لوں یہ بنا لوں یہ بنا لوں تو شاید میں کامیاب ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کامیاب وہ نہیں ہے جس نے یہاں پہ بہت جائیدادیں بنا لی، بڑے گھر بنا لیے، گاڑیاں لے لی، برانڈ نیم پہن لیے، کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ صرف وہ نہیں جو جنت میں چلا گیا، جو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے کامیاب۔ ہم سوچتے بس جنت تک پہنچنا کامیابی ہے، نہیں، جب تک جہنم سے بچاؤ نہ ہو جائے تب تک کامیابی نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جہنم میں انٹر ہو کے پھر جنت میں جائیں گے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس کو جو ہے اس تک پہنچنا میری منزل ہے، نہیں، صرف جنت تک پہنچنا منزل نہیں ہے، جہنم سے بچ کے جنت تک پہنچنا منزل ہے۔ لیکن یہ دنیا ہمیں اتنا مشغول کرتی ہے، اتنا بزی کر دیتی ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ اس کے لیے ٹائم ہی نہیں بچتا جو اصل کامیابی ہے۔ उसको पाने के लिए, हालांकि हमें सबको कुरान पढ़ते हैं हमें ये समझ आती है यहाँ नहीं नहीं ये है असल कामयाबी, ये नहीं है, उसके बावजूद हम धोखे में पड़े रहते हैं, उसके बावजूद हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं। वो तो बंदा जिसको जो तो काफिर है उससे तो शिकायत नहीं, क्योंकि उसके लिए तो ये दुनिया ही जन्नत है, उसका तो ईमान ही नहीं, ना आखरत पे ईमान ना जन्नत जहन्नुम पे ईमान, उसका तो ईमान नहीं। लेकिन जो मुसलमान अपने आप को कहता है और जो कहता है मैं कुरान को पढ़ता हूँ और सीखता हूँ और समझता हूँ, वो अगर इस धोखे में पड़ जाए तो फिर क्या ही कहने, फिर किसी और से क्या शिकायत, कि अगर उसका भी स्टैंडर्ड वो ही है जो किसी और का स्टैंडर्ड है। अगर कुरान पढ़ के भी मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि असल हकीकत इस ज़िंदगी की क्या है, तो मैंने कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं पढ़ा। अगर अभी तक मैं मुतासिर होती हूँ किसी की चीज़ों को देख के, घरों को देख के, कपड़ों को देख के, जेवरात को देख के, गाड़ियों को देख के, पैसे को देख के, और मेरा दिल ऐसे हो जाता है कि मेरे पास कुछ नहीं है और इन्होंने बना लिया और देखो ये कितने आगे चले गए, ये कितने सक्सेसफुल हैं, वाह भाई वाह इनके क्या कहने, तो फिर मेरे इल्म में और एक जाहिल के क्या फ़र्क है। हम अपने आप को इल्म वाला कहते हैं ना, हमने इतना इतना पढ़ लिया, इतने पारे पढ़ लिए, इतना सीख लिया हमने, क्या फ़र्क है। जब अगर कुरान ने मेरी सोच नहीं बदली, कुरान इसलिए आया ताकि मेरी थिंकिंग बदल जाए, मेरे स्टैंडर्ड्स बदल जाए। अगर ये स्टैंडर्ड नहीं बदलता हमारे और मेरे वही स्टैंडर्ड हैं जो कुरान पढ़ने से पहले थे, तो मैंने क्या सीखा फिर। हम सब तालिब इल्म है ना कुरान के, फिर मैंने क्या सीखा। हम सबको इंटरनली रिफ्लेक्ट करना है कि फिर हम क्या 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 सीख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम। अगर ऐसा ही है कि मैं भी वहीं से धोखा खा रही हूँ जहाँ से एक ला इल्म धोखा खाता है, और उसको कहा जाए ना कि ये शराब है इसके पीछे मत भागो, तो वो कहता है कि नहीं तुम पागल हो, मैं तो सही जा रहा हूँ, तुम नहीं चाहते कि मुझे ये बेहतरी मिले, तुम नहीं चाहते मुझे ये खैर मिले, इसलिए तुम मुझे मना कर रही हो ना। उसको ज़िंदगी के आखिर में जाके समझ आता है कि मैंने गंवा दी अपनी पूरी लाइफ और जिसके पीछे मैं भाग रहा था वो शराब है। जिसने एंड में जाके समझा, एंड में तो सभी समझ जाएंगे, वो तो उस जब इंसान वहाँ पहुँच जाएगा कि बिल्कुल आखिरी अब वक्त आ गया, और उस वक्त पता चला आए हाय ये तो धोखे का सामान था। जिसमें एंड में जाके समझा और जो सारी ज़िंदगी कुरान पढ़ के भी वही समझता रहा, तो फ़र्क क्या रहा। हमें तो अल्लाह ने ये दिखा दिया ताकि हमें अब समझ आ जाए, ना कि हम एंड में जाके इस चीज़ को समझें। मैं दो तीन लोगों को मैंने अपनी आंखों से लाइव देखा, यानी कोई ये किताबों में पढ़ने वाली बात नहीं है, जो कैंसर पेशेंट्स और वो हॉस्पिटल में थे, और जब उनको ये डायग्नोज हो गया और सारा पता चल गया कि अब ज़्यादा टाइम नहीं है, ये उनकी ज़ुबान की बात मैं आपको बता रही हूँ। और दोनों तीनों एक दूसरे को जानते बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट लोग। उन तीनों ने एक ही बात कही मुझे, और वो ये थी, ये दुनिया कुछ नहीं है, ये दुनिया कुछ नहीं है। मैंने सोचा अल्लाह हकीकत देखो अब समझ में आ गई, हकीकत अब समझ में आ गई, लेकिन अब समझने का फ़ायदा नहीं। और हमें कुरान हकीकत बताता जा रहा है, हम समझना चाहते ही नहीं हैं, और हम अपना वक्त अपनी एनर्जी सब कुछ इसके ऊपर लगाना चाहते हैं। किसी सियाने ने कहा इस दुनिया के लिए उतना लगाओ जितना यहाँ रहना है, और आखरत के लिए उतना लगाओ जितना वहाँ रहना है। कितना लगना चाहिए, ये नहीं आपको कोई कह रहा आप दुनिया छोड़ के जंगलों में निकल जाओ, ना आपके घर हो, ना आपके ऊपर छत हो, ना आप खाना खाओ ना, लेकिन ये ज़रूरत है, मकसद नहीं है। मकसद क्या है कि हमारे कामयाबी वहाँ मिल जाए, उसके लिए हम मेहनत करें। ये ज़रूरियात हैं, ये ऐसे ही है। मसलन है कि किसी ने एयरपोर्ट जान कोई एयरपोर्ट गया, उसकी फ़्लाइट है, एयरपोर्ट पे आप देखते हैं ना वहाँ पे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं बड़ी, और चीज़ें बिक भी रही होती हैं, बड़े उन्होंने वहाँ पे मार्केट बनाई हुई है। अब एक बंदा वहाँ पे बैठ जाता है अगर, और वहाँ पे चीज़ें ख़रीदने लगता है या रेस्टोरेंट में खाना खाने लगता है, और उसको पता ही नहीं चला वो अब ये मंगवा रहा है, ये मंगवा रहा है, ये चीज़ देख रहा है, वो शॉपिंग कर रहा है, और उसकी फ़्लाइट भी चली गई, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ। वो जो वहाँ पे खाना पीना था ठीक है, वो ज़रूरत थी, मकसद नहीं था। मकसद क्या था कि मुझे फ़्लाइट कैच करनी है, मुझे पहुँचना है अपनी मंजिल पे। वो यही भूल गया कि मुझे फ़्लाइट कैच करनी है, वो इसमें ही लग गया। ठीक है, कोई वो बाथरूम भी जाना है, खाना पीना भी है, कोई चीज़ वो अपनी रास्ते का सामान ले रहा है वो भी ठीक है, मगर वो मकसद नहीं है। अगर वो उस ज़रूरत को पूरी करते करते मकसद को भूल गया तो वो तो पागल कहलाएगा कि तुम कैसे पागल थे, एयरपोर्ट आई तुम इसके लिए थे कि फ़्लाइट कैच करो, दुनिया में आए ही इसलिए कि वहाँ की कामयाबी मिल जाए और जन्नत में चले जाए, तुम यही भूल गए, असल बात ही तुम भूल गए, तो तुमने तो बहुत घाटे का सौदा किया फिर। तो जो वहाँ पे बैठा हुआ अपनी फ्लाइट को मिस कर देगा वो बेवकूफ़ होगा, लेकिन जो वहाँ पे खाना खाएगा, लेकिन उसकी नज़र किस पे, घड़ी पे कि इतने बजे मेरी फ़्लाइट है, मुझे फ़्लाइट पकड़नी, मुझे फ़्लाइट पकड़नी, उसके जहन में कॉन्स्टेंटली आप देखें, आप कोई चीज़ भी देख रहे होते हैं तो यही सोच रहे होते हैं कि फ़्लाइट का टाइम क्या हो गया, अच्छा अनाउंसमेंट क्या, अच्छा ये क्या, आपका कॉन्स्टेंट दिमाग, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपका कॉन्स्टेंटली दिमाग उन चीज़ों में लग जाए, हमेशा ध्यान फ़्लाइट में ही रहता है। इसी तरह ये ज़िंदगी है, इसमें खाना भी है, पीना भी है, रहना भी है, पहनना भी है, ओढ़ना भी है, मिलना जुलना भी है, लेकिन कॉन्स्टेंट जहन में क्या हो कि मुझे वहाँ अल्लाह से मुलाकात करनी, मुझे उसकी तैयारी करनी, कहीं ये मेरे जहन से महव ना हो जाए। अगर ये महव हो गया तो सब कुछ मिस कर दिया, तब खसारा खुसरान मुबीन जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया, ये है बड़ा खसारा कि इंसान यहाँ पे ऐसा महव हो जाए और उसको धोखा दे दिया इस दुनिया की ज़िंदगी ने, जिसने अपने आखिरी लम्हात में ये कहा कि हाय मैंने कुछ नहीं किया, समझ लो वो धोखा खा गया, समझ लो वो धोखा खा गया। और मैंने आपको अभी पिछले दिनों बताया भी था, एक हमारी लास्ट बैच की स्टूडेंट थी जिन्होंने मुझे कॉल करके इतना कहा कि आप जो कहती थी वो सही था, आप जो कहती थी वो सही था, मैं किसी और से ये सुनना नहीं चाहती, किसी और से मैं ये नहीं सुनना चाहती कि आप जो कहती थी वो सही था। या वो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, क्योंकि ना अब मैं उसके लिए कुछ कर सकती ना वो खुद अपने लिए कुछ कर सकती थी, अब आप जो कहती थी वो सही था वो क्या क्या फ़ायदा उसका, अब मेरा सही कहना या गलत कहना उससे क्या फ़र्क पड़ा, क्या प्रूव हो गया, अगर प्रूव हो भी गया तो क्या फ़ायदा, नहीं मैं सुनना चाहती किसी और से कि कोई ये दोबारा मुझे कहे। तो हम जब ये धोखा खाते हैं ना और खाते ही चले जाते हैं, चाहे हमें कुरान बता रहा है और हम गफलत में ज़िंदगी गुजारते चले जाते हैं, तो किसी और का नुकसान नहीं कर रहे होते, हम अपना नुकसान कर रहे होते, हम अपने आप किसी के लिए भी आप अपनी जन्नत को दाव पे नहीं लगा सकते, कोई भी इस काबिल नहीं है, कोई भी इस काबिल नहीं है कि हम उसके पीछे, चाहे वो हमारे घर हों, चाहे वो हमारी और कोई भी चीज़ें हों, चाहे हमारे वो बच्चे ही क्यों ना हों, किसी के पीछे भी अपनी आखरत को दाव पे ना लगाओ, ओके कोई भी काम नहीं आएगा, कोई भी हमारे साथ नहीं जाएगा, और कोई भी ऐसा नहीं है जो वहाँ पे हमें बचा ले अल्लाह के अजाब से। तो फिर यही समझना है, यहीं पे ये करना है कि ये समझ लेना है कि ये दुनिया ख्वाहिशात को पूरी करने की जगह नहीं है, अगर मेरी ख्वाहिश नहीं भी पूरी हुई तो कोई इतनी डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसने आपको कहा ये ख्वाहिशात को पूरी करने की जगह है? हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी को सोने की एक वादी भी मिल जाए ना तो वो कहेगा अब मुझे एक और मिल जाए, एक और मिल गई तो कहेगा एक और मिल जाए, और इट्स सो ट्रू सुभान अल्लाह, और फरमाया कि उसका मुंह कब्र की मिट्टी भर सकती है, इट्स सो ट्रू कि हम वाकई जब हमें एक चीज़ मिल जाती है, मतलब ये हमारी सबकी एक नफ्सियात है ना, तो हमें फिर पहले उसकी बड़ी हम ख्वाहिश कर रहे थे, अच्छा मेरा घर ऐसा हो, अब दो बेडरूम का घर हो, हाय बस दो का मिल जाए ना कितना अच्छा, जब दो का हो गया तो अब हमें लगता है कि हाय नहीं ये भी तो छोटा ही है, अब तीन का मिलना चाहिए, अब तीन का हो गया तो नहीं अब चार का मिलना चाहिए, अब चार का हो गया तो नहीं मैंने उसका फलाने का इससे भी बड़ा देखा था अब मुझे ये मिलना चाहिए, एक कपड़े हैं तो नहीं अब दो होने चाहिए, दो हैं तो चार होने चाहिए, नहीं अब पार्टी के अलग, उसके अलग, शादी के अलग, घर पहनने के अलग, इसके अलग, अब मुझे इतने होने चाहिए, यानी कभी हमारा पेट भरता ही नहीं, हमारी अलमारियों में कितने कपड़े हैं हमारा पेट नहीं भरता, हमारे पास कितना जेवर हो हमारा पेट नहीं भरता, जो हमारा फेवरेट है वो भी मिल जाए ना तो फिर भी उसके बाद हम ये नहीं कहते अब मुझे कभी ज़रूरत नहीं, अब फिर कुछ और पसंद आ जाता, इंसान का पेट कभी भी नहीं भरता। अगर हमने यहाँ पे इस जगह को ये समझ लिया ना कि ये ख्वाहिशात पूरी करने की जगह है, तो फिर भागते रहोगे ना, ख्वाहिशात ख़त्म होंगी और ना ही कभी आप सेटिस्फाइड होंगे, आप भाग भाग के थक जाओगे, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये ख्वाहिशात ख़त्म नहीं होनी, ये चलती ही रहेंगी, और जिस वक़्त इंसान एंड पॉइंट पे पहुंच जाता है ना अपनी ज़िंदगी के एंड पे, तो वहाँ पे लिखा होता है नो यू टर्न, अब चाहे इंसान जितना भी चाहे वापस जाऊं, अब मैं फिक्स कर लूं, अब मैं नहीं ये करूंगी, अब जैसे चल रही थी वैसे नहीं होगा, देर इज नो यू टर्न। ये जिंदगी एक दफा ही मिली है, वापस दोबारा नहीं मिलनी। इसका एक एक लम्हा कीमती है, इसके का एक एक दिन कीमती है। कि मैं जब अपना दिन शुरू करूं तो मुझे ये हो कि जहां पे मेरी ये प्लानिंग है, मैंने आज बच्चों को यहाँ छोड़ना है, मैंने आज ये पकाना है, मैंने आज वहां जाना है, वहां पे मेरी ये भी प्लानिंग हो कि आज मैंने इतना कुरान पढ़ना है, आज मैंने इतने नफल पढ़ने, आज मैंने ये नेकी का काम करना है, वो भी मेरी लिस्ट में हो। अदरवाइज तो दिन गुजरते ही जाएंगे, हमें कहाँ होश आती है, तो पता ही नहीं चल रहा। वक्त ऐसे हमारे हाथों से भाग रहा है, ऐसे जैसे कोई चीज बह रही होती है ना, इस तरह जैसे हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा ख्याल हम सबका यही हाल होगा, इसको हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये पकड़ा नहीं जा रहा। और वक्त ऐसी चीज है, ये सेव नहीं हो सकता कि मैं इसको फ्रिज में रख के सेव कर लूं, फ्रीज कर लूं, इसको बैंक में रख दूं, सेव कर लूं, कहीं सेव नहीं हो सकता। ये जाता जा रहा है हमारे हाथ से, इसके लिए इसके एक एक लम्हे को अगर कैच करना है तो सिर्फ कैसे कैच कर सकते हैं कि एक लम्हे को कीमती समझे। इसमें ही कोई जिक्र कर लो, इसमें कोई खैर की बात कर लो, इसमें ही किसी का भला करने की कोशिश करो, इसी में कोई ऐसा काम कर लो जो वहाँ के लिए मेरे लिए तोशा बन जाए। इसलिए कि ये मुख्तसर है, वो लंबी ऐसी जिंदगी है जो कभी ना ख़त्म होने वाली है। किसी ने कहा कि इस दुनिया में अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करो और इतना उसके आगे झुको, इतनी उसकी फरमाबरदारी करो जितने तुम उसके मोहताज हो। कितने हम उसके मोहताज, कितने मोहताज हैं, यानी एक एक सेकंड, सेकंड का भी कुछ हिस्सा भी हर वक्त ही मोहताज है। पहली मोहताजी तो ये सांस की है कि अगर सांस ही ना आए तो बस खत्म। तो और गुनाह इतना करो जितनी सजा सहने के तुम काबिल हो। और हमारी सजा सहने की हाल तो ये है कि जो हज पे गए हैं वो बता रहे हैं कि हम वहां पे गर्मी भी नहीं सह सके, ये दुनिया की छोटी सी गर्मी है ये भी नहीं सह सके। तो हम में क्या ताकत है कि हम गुनाह तो करते रहें और ये सोचें कि हम बर्दाश्त कर लेंगे वो सजा वहां पे। उतना ही गुनाह करो जितनी सजा तुम सह सकते हो। तो गुनाह करते हुए ये सोच लेना कि इसकी सजा भी मुझे ही सहनी है, किसी और को नहीं सहनी, मुझे ही सहनी होगी, मेरे ऊपर ही आएगी। और उस जिंदगी में, जिस जिंदगी का मैंने आपको बताया था, मुझे बहुत प्यारी बात लगती है इमाम गजाली की, कि वो जिंदगी कितनी है, के फरमाया ऐसे है कि जमीन से लेके आसमान तक अगर हर हर खला का हर हर जर्रा पुर कर दिया जाए राई के दाने से या गंदम के दाने से, फुल हो जाए, यानी जितना ये स्पेस है सारी फुल हो जाए दानों से, और एक परिंदा हो जो हर 1000 ईयर के बाद एक दाना खाए, फिर 1000 ईयर वेट करे फिर एक दाना खाए, फिर 1000 ईयर वेट करे फिर एक दाना खाए, कितने दाने हैं ना, और वो हज़ार हज़ार साल बाद एक एक दाना खा रहा है। तो फरमाते हैं इमाम गजाली कि वो दाने ख़त्म हो जाएंगे लेकिन आखिरत की ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होगी। जस्ट फॉर आर इमेजिनेशन कि वो कितनी लंबी ज़िंदगी है, कभी ना ख़त्म होने वाली। ये वर्ड्स है ना सिर्फ तो समझ नहीं आते, जब एक मिसाल से समझते हैं ना कि वो कितनी लंबी ज़िंदगी है, ये 50-60-70 साल की ज़िंदगी, इसके ही हमसे तो परेशानियाँ और गम सहे नहीं जाते। हम कहते हैं यहाँ की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल, बड़ी मुश्किल, हाँ ये सहे नहीं जाते हैं। गम की रात बड़ी लंबी होती है, एक रात भी बहुत लंबी लगती है। और वो ज़िंदगी कि अगर उसमें खुदा ना खास्ता कि इंसान जहन्नुम में चला जाए तो क्या होगा, कि वहाँ का तो एक लम्हा भी आप जहन्नुम में नहीं बर्दाश्त कर सकते, मैं जहन्नुम में नहीं बर्दाश्त कर सकती। और वहाँ पे तो वो तो समझ ले कोई चॉइस ही नहीं है, वहाँ पे दो जगह हैं जन्नत या जहन्नुम, तीसरी तो कोई जगह है नहीं। हम किस चीज़ का सौदा कर रहे हैं और हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, क्या चीज़ है जो मुझे इतना मशगूल रखती है, इतना मुझे महव रखती है, इतना मुझे बिज़ी रखती है कि मैं कहती हूँ आए मेरे लिए कुरान के लिए टाइम नहीं है, आए मेरे लिए पास कोई खैर का काम करने के लिए टाइम नहीं, आए मुझे कोई नेकी करने के लिए टाइम नहीं, मुझे नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है। कौन सी चीज़ है, हम अपनी ज़िंदगियों में देखें ना, वो क्या चीज़ है जो मुझे इतना बिज़ी रखती है, जो मेरे आवर्स खा लेती है। वो ज़रूर कोई दुनिया की चीज़ होगी, ज़रूर कोई दुनियावी चीज़ होगी जो कि मेरा टाइम खा रही है। उसको डिटर्मिन करेंगे कौन सी चीज़ खाती है, फिर उसका इलाज हम कर सकते हैं कि नहीं ये क्या चीज़ है, अगर ये घर की सफाई सुथराई है तो घर की सफाई सुथराई कितनी करूँगी, क्या ये वर्थ है कि इसके पीछे मैं अपनी आखरत गंवा दूँ। अगर वो कोई शॉपिंग है तो क्या करेंगे, आप यकीन करें हम चीज़ें लाते हैं, ला ला के रखते रहते हैं घरों में, वही चीज़ें थोड़े दिन बाद हमारी नज़र से ही उतर जाती हैं, अब पुरानी लगने लगती, वही गार्बेज में जा रही होती या वही बाहर गैराज सेल में लगी होती, वही जो मैं इतने शौक से लेकर आई थी, जिसके लिए मैंने अपने इतने घंटे लगाए थे, जिसके पीछे मैं भागती भी रही थी कि आज सेल लग गई है, वही चीज़ इतनी वर्थलेस हो जाती हमारी अपनी ज़िंदगी में, ये नज़रों से उतर जाती, नहीं ये पुरानी हो गई अब तो इसका फैशन ख़त्म हो गया अब कुछ और चाहिए, वही चीज़, ये दुनिया की चीज़ों का हाल है। और जो हम औरतों को ज़्यादा गलत फहमी होती है वो ये तीन चीज़ों में बहुत गलत फहमी है, एक ये कि हम अपनी सोचते हैं कि अपनी सूरत को संवारें और सीरत को नहीं संवारते, हालांकि अल्लाह ताला ने हमारी शक्लों को नहीं देखना, शक्लें तो उसने ही दी हैं, उसने हमारे अंदर को देखना है, वो बिज़ात सुदूर उसको भी इल्म रखता है कि जो सीनों के अंदर राज हैं उनका भी इल्म रखता है, जो हम अंदर से हैं, जो हमारे अखलाक हैं, जो हमारे किरदार हैं, जो हमारा अंदर है उसको वो देखेगा, वो तुम्हारे आमाल को और तुम्हारी नीयतों को देखता है, हम संवारने में लगे हुए इसको, इस चेहरे को, ये संवर जाए, ज़्यादा हमारा टाइम इसके ऊपर स्पेंड होता है कि लोगों में मैं सबसे हसीन नज़र आऊँ, सबसे खूबसूरत नज़र आऊँ, अल्लाह ने तो ये देखना ही नहीं, कभी ये भी दिल चाहता है कि अल्लाह की नज़र में मैं सबसे प्यारी नज़र आऊँ, अल्लाह को मैं सबसे अच्छी नज़र आऊँ, उसके लिए मुझे अपना इनर सेल्फ संवारना है कि मैं क्या हूँ, अपने अंदर इखलास लेकर आना है, अपनी नीयतों को सही करना है, अपनी रियाकारी को ख़त्म करना है, अपने अंदर से तकब्बुर को ख़त्म करना है, अपने अंदर से कीने और बुग्स ख़त्म करने हैं, तब मैं अल्लाह को पसंद आऊँगी। तो मेहनत जिस पे करनी है उस पे मेहनत कम है, और जिस पे मेहनत कम करनी चाहिए उसके ऊपर सारा दिन गुजर रहा है। फिर दूसरी क्या चीज़ है कि मुझे ये लगता है कि यही मेरा घर है, हालांकि मेरा एक घर ये है और एक घर आखरत में है, मैं इस घर को टाइम ज़्यादा दे रही हूँ, और वो घर जो वहाँ पे है जिसमें मैंने इटर्नली रहना है, जिसमें मैंने हमेशा हमेशा रहना है, उसकी तरफ मेरी तवज्जो नहीं है। वो ना कि फरिश्ते वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं इंसान के घर की, जब तक वो यहाँ से मटेरियल भेजता रहता है, जिक्र का, इबादत का मटेरियल, फिर वो रुक जाते हैं, जब मटेरियल नहीं आता तो रुक जाते हैं और इंतज़ार करते हैं जब तक इंसान मटेरियल ना भेजे। तो मैं जब इस घर को साफ़ कर रही थी तो क्या मैं सोचती हूँ कि वहाँ पर भी तो मेरा एक घर है ना, उसको भी तो मुझे संवारना है ना, उसको भी तो मुझे बनाना है ना, और उसका मटेरियल मैंने यहाँ से भेजना है। वो कुछ किस्मत लोग हैं जो यहाँ पे घर की सफाई भी कर रहे हैं लेकिन उनका ध्यान उस घर की तरफ है और वो अल्लाह का जिक्र भी करते जा रहे हैं। तो ये सोच के कि वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया दो ही तरह के घर हो सकते हैं, एक जहन्नुम के कैद खाना जिसमें जकड़े में हों, जिसमें ठूंस के डाले जाएँ, जिसमें हथकड़ियाँ हैं और जिसमें अजाब है, इतने तंग घर हैं वो, यहाँ पे किसी को दो बेडरूम का अपार्टमेंट मिल जाए कहता है बहुत छोटा है, और वहाँ पे लोगों को ठूसा जाएगा, अंदर जगह नहीं होगी, ठूसे जाएंगे। और एक घर जन्नत का है जो इतना कुशादा महल है, इतना कुशादा महल है कि यानी जिसके पिलर सोने के, जिसकी दीवारें सोने की, ईंटें सोने की, गारा मुश्क का और चांदी के, और अदना तरीन जन्नती, सबसे जो लोएस्ट दर्जे का जन्नती के पास इतना होगा जितनी ये पूरी दुनिया और इससे 10 गुना ज़्यादा, अदना जन्नती के पास, और आला के पास तो क्या ही बात होगी। और जहाँ के खादिम ऐसे होंगे कि यहाँ पे बड़े घर ले लो तो खुद ही आप नौकर बन जाते हो, किसी के पास नौकर भी हो तो वो नौकरों को कहता है कि मैनेज करना मुश्किल है, वहाँ के नौकरों को मैनेज ही नहीं करना, वो खुद ही सारा काम करेंगे, वहाँ के नौकरों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं कि भाई नौकर क्या कर रहे हैं आप, हम उनके पीछे भाग रहे हैं, हमारे ये भी तो अलमी है ना वहाँ पे, वो कहते हैं कि अब हम नौकरों के पीछे ही हमारी आधी ज़िंदगी लग गई है क्योंकि नौकर हमें सताते बहुत, वहाँ के नौकर ऐसे नहीं। फिर वहाँ पे याकूत के महल हैं, याकूत के महल, और एक खैमा ऐसा बाज लोगों को मिलेगा जो एक मोती का होगा और उसके अंदर रह रहे होंगे दुनिया जो जन्नती होंगे। फिर उसके बाद वहाँ पे लोग दावतें करेंगे और दावत कैसे होगी, एक बादल आएगा और उसी से दस्तरखान उतरेगा, उसी से खाने उतरेंगे। ये वहाँ के लोग हैं। फिर देखो यहाँ पे रहते हैं तो इंसान को डर रहता है, मेरे शौहर है, मेरे बच्चे हैं। कभी कभी तो बच्चे इस दुनिया के अंदर ही इंसान से जुदा हो जाते हैं, कोई पढ़ने चला गया, कोई जॉब पे लिए चला गया, किसी की शादियाँ हो गई, रुख्सत हो गए, कभी दुनिया से ही जुदा हो जाते हैं, मौत आ गई, ख़त्म हो गए। वहाँ पे सब एक साथ होंगे अगर नेक आमाल एक जैसे होंगे, अगर ईमान होगा तो विद फैमिली होंगे जन्नत के दर्जों में, कि अल्लाह ताला जो नीचे होंगे उनको भी ऊपर कर देगा, उनको भी एलिवेट कर देगा जन्नतों के अंदर, ताकि विद फैमिली रहें, ताकि वहाँ पे सुकून रहे। और फिर औरतों के लिबास, यहाँ पे लिबास बनाने और रखने कितने मुश्किल, वहाँ पे ना कोई उतारने का मसला, ना स्त्रियों का मसला, ना धोने का मसला। एक दरख्त होगा और उसके पास जाके ख्वाहिश करेंगे कि हाय अब मेरे ये वाले कपड़े नहीं, अब कोई और कपड़े हो, ये वाले कपड़े गायब, दूसरे कपड़े आ जाएंगे। एक एक वक्त में 70-70 जोड़े पहने होंगे, हर एक में से दूसरा नज़र आ रहा होगा। ये वहाँ के घर हैं, ये वहाँ की ज़िंदगी है। तो ये एक, ये दूसरा मुगालता जहन से निकालने के, मेरा बस ये घर है नहीं, मेरा ये घर भी और मेरा वो घर भी, जैसे इसको संवारना उससे ज़्यादा उसको संवारना, क्योंकि मैंने ज़्यादा वहाँ रहना। जो लोग किराए के घरों के अंदर रहते हैं कितना उनको संवारते हैं, हर वक्त जहन में क्या होता है, ये तो किराए का घर है, इसको तो छोड़ के हमने जाना है। और हमेशा ज़्यादा चीज़ें किसके लिए ख़रीदते हैं, जो मेरा अपना घर होगा। अरे जो अपना यहाँ पर ना, वो भी अपना नहीं है, वो भी किराए जैसा ही है, इसलिए कि यहाँ से चले जाना। अपना वही है जहाँ पे हमेशा रहना है, ये गलत फहमी है हमें। ये सारे ही किराए के घर हैं, इनमें थोड़ी देर के लिए रहना होगा। इसी तरह फिर उसके बाद तीसरी गलत फहमी हमें ये होती है कि हमारी सिर्फ एक ही रुखसती है मेके से ससुराल, एक रुखसती नहीं है, दूसरी रुखसती है यहाँ से अल्लाह के यहाँ, वो भी एक रुखसती है जिसको याद रखें। यहाँ पे माएँ कब से बेटियों के लिए चीज़ें जमा करने लगती हैं, जब बेटी पैदा होती है, कहती हैं इसके लिए ये बना लूँ, इसके लिए ये जोड़ लिया, कोई गोल्ड लेके रखना शुरू कर देती हैं, चीज़ें लेके रखना शुरू कर देती हैं। और सारी ज़िंदगी एक लड़की की तरबियत कैसे होती है, मैं और आप हम सब जानते हैं, बचपन से ये चीज़ कहते थे भाई अगले घर जाके कहीं बातें ना सुनना, अगले घर जाके ये ना होना, सीधी चलो, सीधी बैठो, ऐसे नहीं बोलो, उस तरह से नहीं करो, ससुराल में बातें सुननी पड़ेंगी। सारा वक्त फोकस क्या होता है, ये उस घर जाके बस जाए, ये पिया मन भा जाए। सारा वक्त फोकस इस बात पे होता है कि अपने हस्बैंड को ये प्यारी लग जाए। हम एक जो रुखसती हमारी ये है, दूसरी जो रुखसती होने वाली है उसके लिए हम कितनी तैयारी करते हैं और उसके लिए कितनी हमारी ट्रेनिंग होती है। कि एक देखे, एक 20 साल 22 साल की बच्ची की जब शादी होती है, 20-22 साल ही उसको, जब यानी थोड़ा सा वो होश संभालती, तब से उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देती है उसकी माँ। अल्लाह के पास पहुँचने की कितनी ट्रेनिंग हो रही है कि ऐसे नहीं चलना, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं करना, ये अल्लाह को नहीं पसंद है। और कितना फोकस इस बात पे होता है कि अल्लाह को भा जाऊँ, बस मैं अल्लाह को प्यारी लग जाऊँ, बस उसके लिए तो सजाते भी हैं, संवारते भी हैं कि दूल्हा को अच्छी लग जाए। इस चीज़ की कितनी फिक्र है कि जिस दिन अल्लाह के पास जाना होगा तो मेरा अल्लाह मेरे से राज़ी हो, उस दिन मैं बेस्ट लगूँ, बेस्ट मेरे मेरा इखलाक, मेरा किरदार, मेरा ईमान, मेरा साले अमल बेस्ट होना चाहिए उस दिन के लिए। इस चीज़ को हम कितना ध्यान में रख के ज़िंदगी में चलते हैं। ये हमारे गलत फहमी है, ये हमारी खुश फहमी है कि बस यहीं पे रह जाना है और यहीं पे दिन और रात होते चले जाना है। हम अपने सामने देखते हैं, हम अपने सामने देख रहे हैं जनाजे उठते भी, बच्चों के भी, जवानों के भी, और हम अपने सामने रोज बातें सुनते, फिर भी मुझे और आपको ये यकीन नहीं आता कि मैं और आपको भी एक दिन जाना है। ये यकीन आके ही नहीं देता। और हम क्या करते रहते हैं, ये जो इस जिंदगी का धोखा कि कल कर लूंगी और परसों कर लूंगी और तरसों कर लूंगी और बस हज से आऊंगी तो नेक बन जाऊंगी और ये हो जाएगा तो नेक बन जाऊंगी और जब बच्चे जरा बड़े हो जाएंगे तब कर लूंगी और ऐसा कर लूंगी, ये भी इस जिंदगी का धोखा है कि आपको लगता है कल 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 और कल जरूरी आके रहेगा, कल पता नहीं है कि आएगा कब। वो कल, जब कल आता है तो फिर वो एक कल बन जाती है, जब वो कल आती है तो फिर एक कल बन जाता है, वो कल कभी भी नहीं आता जिंदगी में। और किसको गारंटी है कि कल का दिन मैं जिंदा रहूंगी, इस चीज़ की तो जमानत किसी को भी नहीं है। फिर भी हम अपने आप को बहलाते रहते हैं कि कल कर लूंगी, मैंने कौन सा कहा कि मैंने करना ही नहीं है, जो करना है वो आज करो, कल के ऊपर ना रहो, ये ना कि कल को पछताना पड़ जाए। जो आपके जहन के अंदर चीज़ें हैं ना कि मैंने करनी है, मैंने कब कहा नहीं करनी, मैं करूँगी लेकिन इन फ्यूचर करूँगी, कर लूँगी लेकिन करूँगी, मैंने मना तो नहीं किया आपको, मैं करूँगी ज़रूर, उसके लिए बुढ़ापे का इंतज़ार ना करें, उसके लिए कल का इंतज़ार ना करें, वो आज ही करें। देखें वो कौन सी चीज़ें, अगर आपके जहन में ये है मैंने तहज्जुद पढ़नी मिसाल के तौर, या मैंने हिजाब शुरू करना है, या मैंने अबाया शुरू करना है, या मैंने कोई भी जो भी आपके जहन में है कि मैंने ये करना है, प्लीज़ कल का इंतज़ार ना करें, कल का इंतज़ार ना करें। हो सकता है यही नीयत और यही अमल करना यही आखिरी अमल हो, कोई पता नहीं, हो सकता है यही आखिरी वो चीज़ हो जो दुनिया से पहले जाने से पहले की। आपने देखा आज के वक्त में ये तक हो रहा है, वो जो इमाम मस्जिद थे वो नमाज पढ़ा के अभी उल्टे होके बैठे हैं, आपने देखा होगा उनकी, और वहीं पे गिर गए, अभी अच्छी भली उन्होंने नमाज पढ़ाई है। इतनी अचानक है कि हमारे सामने अल्लाह से मुलाकात का टाइम आ जाए, इतना अचानक है। तो अगर तो मैं सेटिस्फाइड हूँ कि जो मैं कर रही हूँ ठीक है, वो सही है और मुझे कुछ नहीं करना तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी कोई भी प्लानिंग्स हैं तो उसको टालिएगा नहीं, शैतान बहुत बहकाएगा, बहुत कहेगा अभी तुम्हारी एज नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, मगर आप उसकी ना सुनना और अल्लाह की सुनना, क्योंकि मुलाकात अल्लाह से करनी, और अल्लाह ताला हमें सुरखुरू करे जिस दिन हम उसके सामने खड़े हो जाए, और वो हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन दिन हो जब हमारी अल्लाह से मुलाकात हो, अल्लाह ताला वो दिन हमारे लिए हसीन तरीन दिन बना दे कि हमें कोई रिग्रेट्स ना हो, वो उस दिन जो यौमुल हसरा है हसरत का दिन, हमें कोई हसरत ना हो कि हम ये कहने वाले हों कि हमने जितनी हम कर सकते थे हमने कर, हमने अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ी, अल्लाह मैं आई हूँ, मैं जितनी कोशिश कर सकती थी अल्लाह मैंने कोशिश लगा दी, अल्लाह हम वो कहने वाले हों जब हम अल्लाह के सामने खड़े। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, सुभानल्लाहि व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته للذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا ذو الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا غفور الرحيم رب اللہ تعالی ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے، يا حي يا قيوم ذات اللہ جو نیند سے پاک، جو اونگ سے پاک، جو ہر کمزوری سے پاک، اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا ہے، اللہ تو بہت عظیم ہے، اللہ تو بڑا مہربان ہے اور بڑی رحمتیں کرنے والا ہے، اور تو بخش دیتا ہے اور تجھے پرواہ نہیں ہوتی، اللہ تو ہم سب کو بخش دینا، جتنی حاضرین مجلس ہیں اللہ سب کو بخش دینا، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، تو معاف کر کے تانا بھی نہیں دیتا، اللہ معاف کر کے جتاتا بھی نہیں، تو اتنا عظیم رب ہے اللہ، تو ایسے معاف کرنا کہ گناہوں کے نام و نشان بھی نہ رہے، اللہ تو ایسے معاف کر دینا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہ مٹا دینا ہمارے اعمال نامے سے، اللہ گناہوں کو مٹا دینا ہمارے اعمال نامے سے کہ ہم قیامت کے دن بھی نہ دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی رسوائیوں سے بھی بچانا، دنیا کی رسوائیوں سے بھی بچانا، اللہ تعالیٰ تو عزتیں دینے والا ہے، تو عز و منتشا ہوا تو ذل و منتشا، اللہ عزت اور ذلت تیرے ہاتھ میں، اللہ ہمیں عزت کے ساتھ اس زمین پہ رکھنا اور عزت کے ساتھ زمین کے نیچے لے کے جانا، یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہم نے جان بوجھ کے بھی گناہ کیے اور انجانے میں بھی کیے ہیں، اللہ تعالیٰ بعض چیزیں پتہ تھیں بعض پتہ ہی نہیں تھی، اللہ تو معاف کر دے، تو معاف کر دے، تو پردہ پوشیاں کرنے والا، اللہ ہماری پردہ پوشی فرمانا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ہماری پردہ پوشی فرمانا، یا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صالحین بندوں میں شامل فرما دے، اللہ نیک بندیوں میں شامل فرما دینا، اللہ جو انعمت علیہم میں ان میں شامل فرما دینا، یا اللہ تعالیٰ دالین سے محفوظ رکھنا، اللہ مغضوب علیہم جو ہے ان سے محفوظ رکھنا، یا اللہ جن پہ تیرا غضب ہوا اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا، یا اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرما، اللہ تکبر سے ہمیں بچانا، ریاکاری سے ہمیں بچانا، کینوں سے ہمیں بچانا، بغض اور حسد اور نفرتیں جو دلوں میں، اللہ تعالیٰ ان کو پاک اور صاف کر کے اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے اللہ، اور اپنی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دے ہمارے دلوں میں کہ سب سے بڑا ہمارے لیے تو ہی ہو، اور سب سے زیادہ ہم تیرے لیے قربانی کرنے والے ہوں، اور سب سے زیادہ تجھ سے محبت کرنے والے ہوں، اور ہر کام میں تیری طرف دیکھنے والے ہوں، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے، اللہ تعالیٰ یہ دنیا کی محبت اور اس کی دوڑ سے ہمیں بچانا کہ جس کے پیچھے بھاگ بھاگ کے انسان پاگل ہو جاتے ہیں اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ تو اس دوڑ سے ہمیں بچانا، اللہ ہمیں جنت کی طرف کی دوڑ لگوا دے، اللہ ہمیں جنت کی طرف کی دوڑ لگوا دے، اپنی مغفرت کی طرف دوڑ لگوا دے، اللہ تیری رضا ہمارے لیے سب سے بڑی چیز بن جائے، اور لوگوں کے چہرے نہ ہم دیکھیں صرف تجھے دیکھیں کہ تو کس میں راضی ہوتا ہے، اللہ ہم لوگوں کو راضی کرنے والے نہ بنے، تجھے راضی کرنے والے بنے، یا اللہ ہمیں اچھی بیویاں بنا دے، اچھی مائیں بنا دے، اچھی بہنیں اور بیٹیاں بنا دے، یا اللہ جن جن کے حقوق ہمارے ذمے ان کے حقوق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، بہترین طریقے سے ہمیں توفیق عطا فرما، قیامت کے دن یہ نہ ہو کہ یہ لوگ ہمارے گریبان پکڑے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا کہ ہم دوسروں کے حقوق اس دنیا میں ادا کر کے جائیں، کسی کا حق ہمارے ذمے نہ ہو، کسی کا قرض ہمارے ذمے نہ ہو، یا اللہ کسی کا لینا دینا ہمارے ذمے نہ ہو، یا اللہ ہمیں ادا کرنے والا اور اوپر والا ہاتھ عطا فرمانا، اللہ نیچے والا ہاتھ نہ دینا، ہر محتاجی سے ہم سب کو محفوظ رکھنا، ہر محتاجی سے ہم سب کو محفوظ رکھنا، ہمارے گھر والوں کو محفوظ رکھنا، اللہ تعالیٰ ہمیں فقر و فاقے سے محفوظ رکھنا، یا اللہ بیماریوں سے محفوظ رکھنا، اللہ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ہماری اولاد کو صالحین بنا، اللہ متقین کا امام بنا، یا اللہ ہمارے بیٹوں سے مسجدوں کو آباد فرما، ہماری بیٹیوں کو شرم و حیا عطا فرما، اللہ ہمارے بچوں کے نیک نصیب فرما، ہمارے بچوں کے نیک نصیب فرما، اللہ ان کے تھرو ہمیں ٹھنڈک عطا فرما، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے وبال جان نہ بنانا، یا اللہ ان کے ذریعے ہمیں ٹھنڈک عطا فرمانا، یا اللہ ہماری نسلوں کو ایمان عطا فرمانا، ہماری نسلوں میں نہ کوئی کافر پیدا ہو اور نہ کافر مرے، یا اللہ تعالیٰ ایمان کے اوپر رکھنا ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو ایمان پہ رکھنا، ہماری نسلوں میں علماء اور حافظ پیدا فرمانا، صالحین پیدا فرمانا، یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ تعالیٰ بہترین صدقہ جاریہ بنانا ہمیں، ہمارے والدین کے لیے اور اساتذہ کرام کے لیے، اور ہمارے شاگردوں کو اور اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، یا اللہ تعالیٰ شیطان کے فتنوں سے محفوظ رکھنا، آج کے وقت میں اتنے فتنے، اللہ ہمارے گھروں کو فتنوں سے محفوظ رکھ، اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، آفتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، مسئلوں سے، اللہ تعالیٰ آنے والی بلاؤں سے ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں میں چین اور سکون عطا فرما، محبتیں عطا فرما، ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں اور اتحاد اتفاق عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں خوشیاں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، اپنی رحمتیں عطا فرما، یا اللہ ہر قسم کی آزمائش سے ہمیں محفوظ رکھنا، ہر قسم کی کڑی آزمائش سے ہمیں محفوظ رکھنا، ہم اس قابل نہیں ہیں یا اللہ، آزمائشوں کو سہنے کے قابل نہیں ہیں، اللہ ہمیں محفوظ رکھنا، یا اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تو معاف کرنے والا، تو ایسے ہی ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، ہمیں کسی مصیبت میں نہ ڈالنا، نہ دنیا کی اور نہ آخرت کی، نہ دنیا میں ہماری پکڑ کرنا، نہ آخرت میں، اللہ تعالیٰ نرمی سے سیدھے راستے پر لے آنا، صراط مستقیم پہ ہمیں بھی چلا دے، ہمارے خاندانوں کو بھی چلا دے، یا اللہ ہمارے شہروں کو ہمارے سر پہ سلامت رکھنا، مرتے دم تک سلامت رکھنا، یا اللہ ہمیں اچھی بیویاں بنا کے ہم ان کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کر سکیں، اور اس ذریعے سے تجھے راضی کر سکیں، یا اللہ تعالیٰ جو آج سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حق میں، ہاں قبول فرمانا، ہمارے حق میں حجت بنانا، ہمارے خلاف حجت نہ بنانا، یا اللہ قرآن کریم کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس کو سیکھنا، اس پہ عمل کرنا اور آگے پہنچانا ہمارے لیے آسان فرما دے، اللہ آسان فرما دے، ہمیں توفیق عطا فرما، اس کے لیے حکمتیں عطا فرما، اللہ حکمتیں عطا فرما ہم سب کو، اللہ ہم سب سے قبول فرما لینا، اللہ یہاں بیٹھنا قبول فرما لینا، جنہوں نے یہ مجلس منعقد کی ہے اس کا بہترین اجر ان کو عطا فرمانا، اللہ ان کے گھر میں برکتیں عطا فرمانا یا اللہ تعالیٰ، جنہوں نے سنا ہے آئے ہیں اللہ، اس سب کا اجر ان کو عطا فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جو ہماری بہن سلمہ دنیا سے جا چکی ہیں، ہماری اسٹوڈنٹ اور جو بھی اسٹوڈنٹس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ جو انہوں نے کام شروع کیا ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دینا، قبول فرما لینا. جو جو فوت شدگان ہیں، جو بہنیں بیٹھی ہیں ان کے جو فوت شدگان ہیں، اللہ سب کو قبروں کو کشادہ فرمانا، ان سے درگزر فرمانا، ان کو معاف کر دینا. آمین یا رب العالمین.